ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीन बंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्या कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद्भागवतम स्कंध छ अध्याय सात श्लोक बाईस छ सात बाईस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य अयम् अनयस्य आसीत् परेभ्यः वः पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत् सुरः। तस्यायमनयस्यासीत् परेभ्यः वः पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुरः। तस्य उस अयम यह अनयस्य तुम्हारी कृतज्ञता का आसीत था परेभ्यः अन्यों के द्वारा वह तुम सबों की पराभव पराजय प्रक्षीणेभ्यः निर्बल होते हुए भी स्ववैरिभ्यः तुम्हारे अपने शत्रुओं द्वारा जो पहले तुम्हारे द्वारा पराजित हुए थे समृद्धाना तुम्हारे ऐश्वर्यशाली होने से च तथा यत जो सुराह हे देवों। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, हे देवों, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे, भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे। तात्पर्य, और असुरों से निरंतर लड़ते रहने के लिए देव विख्यात हैं। ऐसी लड़ाइयों में सदा असुर ही पराजित होते थे, किंतु इस बार देवता पराजित हुए थे। क्यों? जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसका कारण था कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु के प्रति असम्मान का भाव ही असुरों से उनके पराजय का कारण था। शास्त्रों का वचन है कि जो अपने सम्माननीय बड़े व्यक्ति का अनादर करता है उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पुण्य कार्यों के फल का क्षय होता है और इस प्रकार उसकी औन्नति होती है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग इंद्र के द्वारा बृहस्पति जी के किए हुए अपमान की घटना का विवरण सुन रहे हैं। जैसा आप सुन चुके हैं कि एक बार की घटना है कि इंद्र अपने दरबार में बैठे थे। इंद्र राजा हैं, उनको दरबार में बैठने का अधिकार है, यही उनके लिए स्वाभाविक है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि लंघित सतपथ, वे जो सदाचार है उसका उल्लंघन कर रहे थे। इंद्रस त्रिभुवनेश्वर ज मदोत्लंघित सतपथ। इंद्र का ऐसा पद है कि सारा त्रिभुवन उसके अधीन होता है, और इतना बड़ा पद पाने से उनको घमंड हो गया, मद हो गया, अभिमान हो गया और सदाचार का उल्लंघन करने लगे। वे क्या सदाचार का उल्लंघन किए, तो इसको कह रहे हैं कि अपने दरबार में बैठे थे, अपने पत्नी के साथ बैठे थे। यह देखा जाता है कि व्यक्ति को पद अभिमान में डाल देता है। पद, बड़ा पद प्राप्त होने से व्यक्ति का अभिमान बढ़ जाता है। सुंदर रूप प्राप्त होने से अभिमान बढ़ जाता है। बड़ा बड़ा कार्य कर दिया है तो उससे अभिमान बढ़ जाता है। और विद्या अर्जित किया है तो उससे अभिमान बढ़ जाता है। भगवान तो कहे हैं कि ये सब चीज प्राप्त होने के बाद भी जिसमें अभिमान न आवे तो यही समझो कि हमारी कृपा है। स्वाभाविक धन पद ऐश्वर्य विद्या जन्म से अभिमान आ जाता है, और खास करके व्यक्ति अपने सुंदर पत्नी के साथ होता है तो उसका अभिमान और बढ़ जाता है। इंद्र के विषय में लिखा गया है कि अर्धचंद्राकार आसन पर जो खूब सुंदर था अपने पत्नी के साथ बैठे थे, और उनके जो अनुयायी लोग थे उनका जसोगान कर रहे थे, और सभा में गुरु जी आए, बृहस्पति जी आए, लेकिन वे खड़ा होकर के सम्मान नहीं किए। कर्तव्य यह बनता था कि गुरु जी आ गए तो आसन छोड़ करके उनको नमस्कार करना चाहिए, लेकिन नमस्कार करने की बात तो दूर है, न चचाला अपना देह भी नहीं हिलाए। कभी कभी व्यक्ति बहुत व्यस्त होता है या किसी कठिनाई में होता है तो गुरुजनों को प्रणाम नहीं कर पाता, लेकिन दृष्टि से हाथ जोड़ करके या भाव भंगिमा से सम्मान प्रकट जरूर कर देता है। लेकिन इंद्र किसी तरह सम्मान प्रकट नहीं किए। बृहस्पति जी तो विद्वान व्यक्ति हैं, वे समझ गए श्रीमद विक्रिया, इंद्र में यह जो परिवर्तन हुआ है तो यह तो ऐश्वर्य का ऐश्वर्य के कारण है, इस बात को वे समझ गए। यद्यपि वे तत्काल साप दे सकते थे, लेकिन बृहस्पति जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, वे समझ गए कि माया का प्रभाव ऐसा ही होता है, तो तुष्णिम वे कुछ बोले नहीं और सभा से निकल गए। लेकिन अब इंद्र की यह विशेषता है कि थोड़े देर के लिए आसुर भाव आ गया लेकिन तुरंत अपने होश में आ गए, और उनको बहुत पश्चाताप होने लगा कि मैं भरी सभा में अपने गुरु का अपमान किया, यह पद बेकार है, हम तो बहुत निम्न स्तर के व्यक्ति हैं। और तुरंत उनका विवेक उदित हुआ और वे निर्णय लिए कि गुरु जी के चरणों पर अपना मस्तक रख करके और मैं अपराध को मार्जित करूंगा, और गुरु जी को वे खोजने लगे। लेकिन बृहस्पति जी तो कई एक दृष्टि से बहुत उन्नत व्यक्ति हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और वे इंद्र के चेतना को, इंद्र के निर्णय को समझ गए और वे भी अंतर्हित हो गए। अब इंद्र खोजते रहे लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। अध्यात्म विद्या, इंद्र देवता हैं, उनको भी बहुत बहुत विद्या प्राप्त है, अंतर्धान होने की भी विद्या इंद्र को प्राप्त है। इस विद्या में वे इतने दक्ष हैं कि दूसरे को भी दे देते हैं। पृथु महाराज के पुत्र से प्रसन्न होकर के अंतर्धान गति उसको भी प्रदान कर दिए। लेकिन बृहस्पति जी अध्यात्म विद्या इंद्र से भी अधिक निपुण हैं, और अंतर्हित हो गए। जब ही असुरों को पता चला कि देवताओं के गुरु जी उनका त्याग कर दिए हैं, तो वे देवताओं पर आक्रमण कर दिए। अपने गुरु शुक्राचार्य से मंत्रणा करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के और वे आक्रमण कर दिए और देवताओं के खूब पिटाई किए। तीक्ष्ण हथियारों से इनको इतनी पिटाई किए, इतना घायल कर दिए कि देवताओं का अंग भंग हो गया। कई एक हाथ कट गए, पैर टूट गए, कई एक अंग पर चोट लग गया और देवता अब निराश हो करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी देवताओं की स्थिति देखे तो उनको दया आ गई। स्तांस तथा अभ्यर्थितान वीक्ष, देवता बड़े कष्ट में थे और भगवान आत्मभूरज कृपया परिया देव उवाच परिशांतोयन। देवता संकट में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं और दया से भर गए ब्रह्मा जी और उनको सांत्वना देते हुए उनसे कहने लगे। चूंकि देवता लोग गलती किए हैं इसलिए ब्रह्मा जी उनको फटकार लगा रहे और कह रहे हैं कि अहो बतः पुरश्रेष्ठा यवद्रम वह कृतम महत्, संबोधित कर रहे हैं पुरश्रेष्ठा अब देवताओं में श्रेष्ठ हैं और बहुत भारी गलती किए। वास्तव में कोई छोटा व्यक्ति गलती करता है तो उस गलती की उतनी गुरुता नहीं होती है, लेकिन महान व्यक्ति गलती करे, बड़ा व्यक्ति गलती करे तो उसकी गुरुता अधिक होती है, वो ज़्यादा गलती माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो धरती पर ही लेटा हुआ है वो क्या गिरेगा, जो धरती पर ही है तो गिरेगा क्या, लेकिन जो आकाश में है तो वह गिरेगा तो उसको बहुत चोट लगेगा। तो कह रहे हैं कि पुरश्रेष्ठा और अभद्रम व कृतम महत्, आप लोगों का पोजीशन तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत भारी गलती किए हैं। तो क्या गलती किए हैं कि ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम दंतम ऐश्वर्या नाभ्यनंदत, आप लोग ब्राह्मण का अपमान किए और साधारण ब्राह्मण का नहीं, दांतम जो सब प्रकार से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किए हैं, संयमित जीवन बिताने वाले हैं उनका अपमान किए। और केवल साधारण संयम की बात नहीं, ब्रह्मिष्टम वे ब्रह्मनिष्ठ हैं। वह एक ब्रह्मनिष्ठ जो वेद के तात्पर्य को जानता है, उसके अनुसार आचरण करता है, ऐसे ब्राह्मण का अपमान किए हैं, उनका सम्मान नहीं किए हैं, तो बहुत भारी गलती किए। ब्रह्मा जी के वचन पर ध्यान देना चाहिए, तीन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ब्राह्मणम दांतम ब्रह्मिष्टम। एक तर्क किया जा सकता है कि भाई इंद्र क्या गलती किए, ऐसा अर्थशास्त्र कहता है। अर्थशास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स। अर्थशास्त्र का नीति है कि सिंहासनस्थो राजा कमपि नाभ्युत्तिष्ठेत। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि राजा जब सिंहासन पर बैठा है, राज सिंहासन पर बैठा है, तो उस समय कोई भी आवे, कोई भी जाए, उसको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। तो जरूर नीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन अब ब्रह्मा जी की बात तो दूर है। इंद्र खुद ही इस सिद्धांत को दुत्कारे हैं, इसकी निंदा किए हैं। वे खुद कहे हैं कि जो ऐसा सिद्धांत देते हैं तो वे धर्म के सिद्धांत को नहीं जानते। सिद्धांत कैयक है लेकिन वो सिद्धांतों को समझना होता है कि कौन श्रेष्ठ है। कई एक स्तर है तो नीति शास्त्र के हिसाब से देखें, अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें तो राजा के लिए यह निर्धारित किया गया है कि सिंहासन पर बैठा है तो किसी के सम्मान करने के लिए खड़ा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंद्र कह रहे हैं कि जो ये सिद्धांत दे रहे हैं वे धर्म के सिद्धांत को नहीं जानते और इस सिद्धांत का अनुसरण करने का अर्थ है कि पत्थर का नाव लेकर के समुद्र को पार करने कोई चल दे। क्योंकि धर्म का सिद्धांत है कि ब्राह्मणम कुल संपन्नम भक्तम विष्णुर महात्मनः आयांतम विक्ष नोतिष्ठेत सह दुखे परिभूयते। धर्म शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई ब्राह्मण या कोई संभ्रांत व्यक्ति या भगवान का भक्त महात्मा आयांतम विक्ष नोतिष्ठेत, ये व्यक्ति आ रहे हैं और उनको देखते ही जो व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ सब दुखर परिभूयते और उसका अपमान होना ही है, उसका पराजय होना ही है। और केवल सामान्य पराजय नहीं होगा, दुख है, दुख के साथ उसका पराजय होगा, बहुत कष्ट भी उसको होगा और उसकी हार भी होगी। तो धर्म का सिद्धांत यही है कि ब्राह्मण को ये संभ्रांत व्यक्ति को ये भगवान के भक्त को आते हुए देखते ही खड़ा हो जाना चाहिए और ऐसा नहीं करेंगे तो दुख आना ही है, कोई संकट आना ही है और आपका पराजय निश्चित है। वे एक प्रश्न होगा कि इस साधारण व्यक्ति के लिए सिद्धांत लग सकता है लेकिन जो खुद पूज्य है बड़े व्यक्ति हैं तो उनको किसी के सम्मान करने की क्या जरूरत है। इस विषय में सिद्धांत समझना चाहिए कि जो बड़े लोग हैं वे बड़े लोग का और सम्मान करते हैं बल्कि छोटे छोटे लोग तो उस पर आक्षेप करते हैं या उसको कष्ट देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो पूज्य व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। सिद्धांत दिया गया है कि मान्या ये वही मान्या न मानम कुर्वन्ति नेतरे। अरे सच्चाई तो यह है कि जो बड़ा आदमी है वही बड़े आदमी का सम्मान करता है, छोटा आदमी बल्कि नहीं सम्मान करता है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि रुद्रो विभर्ति मूर्धेन्दुम स्वरभानुस्तम जिघृक्षति। शिव जी को देव देव कहा जाता है, देवताओं में भी पूज्य है लेकिन वे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा देवता है तो उनको मस्तक पर धारण करते हैं। बड़े आदमी चंद्रमा का सम्मान कर रहे हैं लेकिन राहु क्षुद्र व्यक्ति वो तो चंद्रमा को निगलना चाहता है। तो बड़े व्यक्ति का यही लक्षण है कि बड़े व्यक्ति का गणमान्य व्यक्ति का सम्मान करे। वो बड़े व्यक्ति का सम्मान करने से बड़ाई में कोई कमी नहीं आती, महिमा में कोई कमी नहीं आती है बल्कि उसकी महिमा और बढ़ जाती है। शिव जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हैं तो छोटे नहीं हो गए बल्कि उनकी शोभा बढ़ जाती है। और इसलिए बड़े व्यक्ति का भी दायित्व है, उसका भी कर्तव्य है कि वे पूज्य व्यक्ति का सम्मान करे, आदरणीय व्यक्ति का सम्मान करे। और यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको भगवान दंड देते ही हैं, उसका पराभव होता ही है, उसके जीवन में दुख का बाहुल्य आएगा ही। और कह रहे हैं कि ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम दान्तम, तीन विशेषण दे रहे हैं। अरे केवल ब्राह्मण आए तो उसी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो बस ब्राह्मण है इतने से ही वे सम्माननीय है। श्रीमद् भागवतम में भगवान स्पष्ट कहे हैं कि ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वे सामिह प्राणिना। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन सब प्राणी एक समान नहीं हैं। उनमें एक हायरार्की है, मतलब बड़ाई छोटाई का क्रम है, और भगवान तृतीय स्कंध में इसको बतलाए हैं कि जीवा श्रेष्ठा या जीवा न। अब हायरार्की देखा जाए तो जिसमें प्रकट चेतना है वह उस प्राणी से श्रेष्ठ है जिसमें चेतना प्रकट नहीं है। जैसे पहाड़ इत्यादि भी जीव ही हैं, लेकिन इस समय उनमें चेतना प्रकट नहीं है, तो उनसे वे प्राणी जिनमें चेतना प्रकट है जैसे वृक्ष इत्यादि हैं, तो ये श्रेष्ठ हैं। अच्छा, ऐसे में भी वे श्रेष्ठ हैं जिनमें चित्त है, जो संवेदनशील हैं, कुछ अनुभव कर सकते हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनके पास इंद्रियां हैं। इंद्रियों वालों में भी जो गंध का अनुभव कर सकते हैं वे श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे प्राणियों का हायरार्की दिया गया है, क्रम दिया गया है श्रेष्ठता का, लेकिन कह रहे हैं कि सब में श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण। ततो वर्ण तेसम श्रेष्ठा, ततो वर्ण चत्वार तेसम ब्राह्मण उत्तम। सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, और वर्णाश्रम में भी जो ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठ हैं, और ब्राह्मणों में भी जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठ हैं, और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी जो वेद के तात्पर्य को जानते हैं वे श्रेष्ठ हैं, और वेद के तात्पर्य को जानने वालों में भी जो संशय का छेदन करने वाले हैं वे श्रेष्ठ हैं, और वैसे व्यक्तियों में भी जो अपने धर्म का पालन कर रहा है, ब्रह्म में वेद में निष्ठ है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो हम यह कह रहे हैं कि कोई भी प्राणी है तो उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो भगवान इस बात को दशम स्कंध में कह रहे हैं कि ब्राह्मणों जन्मना श्रेया, केवल जाति से वो ब्राह्मण है फिर भी सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, जन्म से ही वह श्रेष्ठ है। और फिर तपसा विद्या तुष्टया किमु मत कलया युत, फिर वो तपस्वी हो, तपस्या से युक्त है। तपस्या का अर्थ है कि अपने धर्म का पालन कर रहा है, या वो विद्या जानता है, या संतोष कर रहा है, तो और श्रेष्ठ है। ये क्रम है, स्वधर्म पालन करने से भी श्रेष्ठ है जो विद्वान है, उससे भी श्रेष्ठ है जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, बहुत भोग के लिए ललायित नहीं है, और किमु मत कलया युतम। और फिर जो हमारी भक्ति से युक्त है उसके विषय में क्या कहना है। भगवान ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि न ब्राह्मणान में दैतम रूप में तत् चतुर्भुजम, करें कि ये जो हमारा चतुर्भुज रूप है तो ब्राह्मण से अधिक प्रिय नहीं है। यह हमको ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं है। और जहां तक सम्मान करने की बात है तो ब्राह्मणों का अधिक सम्मान होना चाहिए, इस अर्थ में कि सर्व वेद मयो विप्रा सर्व देव मयो ह्ययम। भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जो विग्रह है तो सर्वदेवमय है, सर्वदेव वरेश्वर, भगवान के अधीन ही सारे देवता हैं, लेकिन भगवान भी वेद के अधीन है। ये न्याय का सिद्धांत है कि प्रमेय सदैव प्रमाण के अधीन होता है। इसको व्यवहारिक रूप से समझिए कि भगवान तो बहुत श्रेष्ठ हैं, सबके पूज्य हैं, लेकिन इस बात का ज्ञान न हो, लोगों को इस बात को कोई बतलावे न, तो कौन भगवान की पूजा करेगा। जब तक श्रील प्रभुपाद जी से संपर्क नहीं होता संस्था के माध्यम से, भक्त के माध्यम से, हम लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते। भगवान जरूर पूज्य हैं, लेकिन अब भगवान से भी महिमा अधिक ब्राह्मणों के, इस अर्थ में कि सर्व वेदमय विप्र, ब्राह्मण वेद को धारण करते हैं और वेद अधिक महिमाशाली है, वेद ही प्रमाण है। वे यहां तक कि वेद का अवहेलना करके भगवान ही कोई बात कहते हैं तो सामान्य रूप से उसको भी नहीं माना जाता है। भगवान बुद्ध तो अवतार लेकर के ही आए, लेकिन अब वेद के विरुद्ध बोलने लगे तो उनको भारत से बाहर कर दिया गया। बौद्ध धर्म का खूब प्रचार था, लेकिन वेद के विरुद्ध है, इसलिए कम से कम भारत से तो उसको आउट कर ही दिया गया। तो ब्राह्मणों की बहुत महिमा है और उनको नमस्कार करना चाहिए। भगवान स्पष्ट शब्दों में यह उपदेश दिए हैं। वे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 64वें अध्याय में नृग महाराज के प्रसंग में कह रहे हैं कि विप्रम कृतागसम अपि नैव द्रुह्यत मामका। अरे दूसरे लोग जो करें अपने भक्तों को या अपने परिवार वालों को संबोधित करके भगवान उपदेश दे रहे हैं कि विप्रम कृतागसम अपि, कोई ब्राह्मण कुछ अपराध भी कर दिया है नैव द्रोहित माम का, फिर भी उसे द्रोह मत करो, उसके दंड देने का विचार मत में न लाओ। घनंतम बहुसपंतम वा नमस्कुरुत नित्य स, बल्कि वे मारने के लिए उद्यत है, बहुत गाली बक रहा है, फिर भी पहले के समान ही उसको नमस्कार करो। भगवान कम से कम अपने भक्तों को तो संबोधित करके यह उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे दंड के पात्र हो जाएंगे। यथा हम प्रणमे विद्वान अनुकालम समाहित तथा नमत जूयम च यो जन्यथा मेष दंड भाग। कोई कह सकता है कि जब भगवान कह रहे हैं तो भाई श्रद्धा तो नहीं है, लेकिन भगवान की बात है तो नमस्कार कर देते हैं। कहें कि ना, बिना श्रद्धा का नहीं। यथा हम प्रणमे, जैसे मैं प्रणाम करता हूँ श्रद्धा से, वैसे प्रणाम करो। और ऐसा प्रणाम नहीं किया तो हम दंड देंगे। हमारी स्वतंत्रता नहीं है कि हम नमस्कार करें या न करें। भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैं श्रद्धा से नमस्कार करता हूँ वैसे नमस्कार करो। भगवान आचरण करके दिखाए हैं। और नारद जी भी जानते हैं कि भगवान है, और भगवान भी जानते हैं कि हमारे भक्त हैं, लेकिन अब द्वारका में नारद जी पहुंचे तो भगवान प्रणाम करते हैं। इस सदाचार यही है, तो कह रहे हैं कि जैसे मैं प्रणाम करता हूं वैसे प्रणाम करना चाहिए, श्रद्धा के साथ रोज करना चाहिए। लेकिन इंद्र सभा में देखे बृहस्पति जी को और नमस्कार नहीं किए, कोई सम्मान नहीं किए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बहुत भारी गलती किया। ब्राह्मणम दांतम, बृहस्पति जी पर विचार किया जाए तो वे तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण निकलेंगे किसी भी दृष्टि से देखा जाए। और भगवान जिस व्यक्ति के विषय में कह रहे हैं कि तुम बुद्धि में अणु मात्र भी हमसे कम नहीं हो, उद्धव जी को कहे हैं भगवान कि बुद्धि में अणु मात्र भी तुम हमसे कम नहीं हो, और वे उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं। ज्ञान के दृष्टि से, न्याय के दृष्टि से कितना उन्नत उनका व्यक्तित्व है, और धर्म के दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि पुरोधसाम मुख्यम में विद्धि पार्थ बृहस्पति, जितने पुरोहित हैं तो यही समझो कि सबसे श्रेष्ठ बृहस्पति जी हैं। इस अर्थ में कि स्वर्ग के पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी भी विभूति हैं भगवान के, वो भी पुरोहिती करते हैं, लेकिन वे तो मर्त लोक में भी करते हैं, स्वर्ग लोक में भी करते हैं, लेकिन बृहस्पति जी तो देव लोक के पुरोहित हैं। और जहाँ तक ज्ञान का विषय है, भक्ति का विषय है, तो भगवान कहे हैं ब्रह्मिष्ठा नाम च बृहस्पति, जो वेद के तात्पर्य को समझने वाले हैं, वेद के तात्पर्य में निष्ठ हैं, वैसे व्यक्तियों में सबसे श्रेष्ठ बृहस्पति जी हैं। तो ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का तुम लोग अपमान किया, बहुत भारी गलती की, और तस्य अयम अनयस्य आसित परिभ्य वह पराभव, इसी अपराध का, इसी कृतज्ञता का यह परिणाम है कि तुम लोगों का पराजय हुआ, तुम लोग अभी पराजित हुए हो, तुम लोग अपराध किए हो, कृतज्ञ हो, किए हुए उपकार को नहीं माने हो, और वह पराभव शत्रु से तुम्हारा पराजय हुआ। कैसे शत्रु से? प्रक्षीणेभ्य, तुलना किया जाए तो तुम्हारे ऐश्वर्य के आगे उनका ऐश्वर्य बहुत कम है, वे कम शक्तिशाली हैं, कमजोर व्यक्ति से भी तुम्हारा पराजय हुआ। समृद्धा नाम, तुम लोग कई एक दृष्टि से बहुत आगे हो, लेकिन ऐसा विपरीत स्थिति आ गई, तुम लोग इतने घायल हो गए हो, ये परिणाम है गुरु के अपमान करने का, ब्राह्मण का अपमान करने का, इसी का परिणाम है। तो गुरु का, ब्राह्मण का अपमान करने पर तो उसका परिणाम आ ही जाता है। अब एक प्रश्न होगा कि देवता लोग क्यों अपमान कर दिए, इंद्र क्यों अपमान कर दिए, भाई क्या उनको ज्ञान नहीं है? लेकिन देखिए, एक सिद्धांत है कि व्यक्ति बहुत निकट हो जाता है तो कुछ अनादर करने ही लगता है, सम्मान की भावना में कमी आने लगती है। इस बात को श्रीमद् भागवतम में कहा गया, सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम अनादरण कारण। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इंद्र अपमान कर दे, अनादर कर दिए, इसलिए कि सोचेगा अरे तो रोज आते ही हैं। अब यह विचार नहीं किए कि उनके सान्निध्य से ही उनका ऐश्वर्य बढ़ा हुआ है, उनके आशीर्वाद से ही वो पद मिला है, उनके मन में विचार है कि तो रोज आते ही हैं। बहुत नैकट्य बढ़ जाता है, बहुत आदमी नजदीक हो जाता है, तो कुछ कुछ अपमान के, अनादर का, अनादर की प्रवृत्ति आ जाती है। उदाहरण दिया गया है कि जो लोग गंगा जी के तट पर हैं तो वे कभी कभी दूसरे तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, शुद्ध है इस भावना से कि हम शुद्ध हो जाएं। अरे अब गंगा जी से शुद्ध करने वाला कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अब गंगा जी के निकट आवास मिल गया है तो उनके मन में भावना आ जाती है। वो इंद्र अनादर कर दिए क्योंकि गुरु जी का रोज आना जाना था, लेकिन जो भक्ति करने वाले हैं तो उनको तो कभी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे गुरु ब्राह्मण के अपमान की बात दूर है, नित्य उनका सम्मान करना चाहिए। और जहाँ तक प्रणाम करने की बात है तो ब्राह्मण भक्त को प्रणाम करने की बात तो दूर है, भगवान एकादश स्कंध में उपदेश दिए हैं कि जो अपने दोष को दूर करना चाहते हैं, लोग प्रश्न करते हैं, हमें बड़ा क्रोध आ जाता है, अरे कोई भी दोष है वो अहंकार के चलते हैं। तो जो व्यक्ति अहंकार को दूर करना चाहता है तो किसी भी प्राणी के हृदय में भगवान है उनका सम्मान करना चाहिए। और जहां तक प्रणाम की बात है तो प्रणमे दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोखर। आदमी की बात तो दूर है, ब्राह्मण की बात दूर है। जो अपने भक्ति की वृद्धि चाहते हैं तो भगवान यही उपदेश दिए हैं कि व्यक्ति को आज स्व कुत्ते चंडाल गाय गधा तक को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तब जा करके अपना अहंकार दूर होगा, बहुत आसानी से दूर हो जाएगा और इससे कुछ क्षति नहीं है। प्रणाम के विषय में एक सिद्धांत समझना चाहिए कि किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो वह भगवान तक पहुंच जाता है। किसी भी नदी का जल है अंततः वह समुद्र में पहुंचेगा। तो प्रणाम की प्रवृत्ति होनी चाहिए। बहुत सारे आचार्य हैं कि गिनती करके वैष्णवों को प्रणाम करते थे कि आज कम न रह जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी का नियम था, वो प्रणाम करते थे, वैष्णवों को प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर महाराज का रोज का नियम था कि गुरुजनों के घर में जा करके नमस्कार करते थे। और जो व्यक्ति ब्राह्मण का संभ्रांत व्यक्ति का गुरु को या भगवान के भक्त को नमस्कार नहीं करता है तो कई एक प्रकार के कठिनाई से घिर जाता है। और ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रहे हैं कि तुम एक उन्नत ब्राह्मण के अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, उसी का यह परिणाम है। और आगे वे उपाय बतलाए हैं तो उसको हम लोग आगे के क्लास में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।